सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन के दूसरे दिन। कल हमने देखा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अवतरित हुए 500 वर्ष पूर्व, और हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देखा था कि 1486 उस साल चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अवतरित हुए, और 1534 इस साल वो इस धरातल से चले गए अपने धाम पुनः वापस। तो 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर रुके, और किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब भी चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर थे तो अलग अलग भक्तों ने उनके ऊपर जीवन टिप्पणियां लिखी हैं। तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से लोचनदास ठाकुर, इन्होंने सर्वप्रथम टिप्पणी लिखी थी जिसका शीर्षक था चैतन्य मंगल। उसके पश्चात चैतन्य भागवत यह टिप्पणी लिखी गई थी जिसके लेखक थे वृंदावन दास ठाकुर, और तीसरे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत यह ग्रंथ लिखा है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सुमधुर लीलाओं का जो है वो वर्णन चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ में आता है, और खास करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनकी विशेषता यह है कि न केवल भगवान की लीला अपितु तो तत्व, भगवत तत्व भी उन्होंने ठीक से प्रस्तुत किया है। इसलिए वो कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कि सिद्धांत सुनने के लिए, समझने के लिए आलस नहीं करना चाहिए हमें। और मैंने कहा था कि किस प्रकार से आदि लीला जो है वो तत्व का वर्णन करती है, और इसलिए कई भक्त आदि लीला सुनते 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 बीच में छोड़ देते हैं और फिर वो चैतन्य चरितामृत में गाड़ी उनके आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन ये गौड़ीय वैष्णव के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि भगवद गीता हमने देखा था कल की किस प्रकार से भगवान की वाणी है। श्रीमद भागवतम यह ग्रंथ भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, और चैतन्य चरितामृत भगवान की मानसिकता, इसका वर्णन हमें इसमें मिलता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका भी यह प्रिय ग्रंथ था, और श्रील प्रभुपाद जी का भी काफी प्रिय ग्रंथ था, और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी का प्रचार सारे विश्व में हो। इसलिए उन्होंने भागवतम से पूर्व चैतन्य चरितामृत की टीका अपनी पूर्ण की 1974 में, और 1977 तक जब वो इस धरातल से जाने का सोच रहे थे, इस धरातल छोड़ने का उनका मानस था, उस समय वो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद तक पहुंचे थे, 13वें अध्याय तक। हालांकि 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम के पूरे हैं, तो भागवतम भी उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन उसके पूर्व चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अपने भक्तों को उन्होंने दे दिया। तो हमने देखा किस प्रकार से जो ये ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, इसमें आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, इनका वर्णन आता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु 48 साल इस धरातल पर थे, तो पहले 24 साल जब वो गृहस्थ आश्रम में थे उसे आदि लीला कहा जाता है। जन्म से लेकर के पहले 24 साल ये है आदि लीला, और 24 साल से लेकर के 48 साल तक ये है भगवान की शेष लीला, यानी बाद वाली लीलाएं ऐसा कहते हैं। तो जो आदि लीला है उसमें पहले 24 साल, बाद वाले 24 साल आते हैं शेष लीला में। शेष लीला में भी पहले जो 6 साल है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह भ्रमण करने के लिए गए थे कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, कभी दक्षिण देश में, कभी गौड़ देश में, कभी वृंदावन में गए थे। और जो आखिरी 18 साल थे उस समय नीलाचल उन्होंने अपना निवास चुना था, और वहीं पर वो गंभीरा एक क्षेत्र है, जगह है, वहां पर वो निवास किए 18 साल तक, कहीं पर गए नहीं। सारे भक्त मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुर में आया करते थे। ये है अंत्य लीला 18 साल, मध्य लीला 6 साल, और आदि लीला जो है वो पहले 24 साल। और हमने देखा था कि जो आदि लीला है उसमें अलग अलग अध्याय है,
दो भागों में विभाजन है। आदि लीला के 17 अध्याय का दो भागों में विभाजन है। पहले 12 अध्याय वो प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, और बाद वाले जो 5 अध्याय हैं उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म और उसके पश्चात की उनकी लीलाएं संन्यास तक चलती है। तो जो पहले 12 अध्याय है उसके पहले ही अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने 14 श्लोक लिखे हैं और उन 14 श्लोकों का विस्तार पहले 7 अध्याय में चलता है, इसलिए पहले 7 अध्यायों को तत्व निरूपण कहा जाता है। 8वां अध्याय जो है उसे कृष्ण लीला जन्म वर्णन कारण, क्यों मैं ये लीला का वर्णन कर रहा हूं उसका कारण बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। 9वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक जो है भक्ति कल्प वृक्ष इसका वर्णन आता है, और फिर 13, 14, 15, 16, 17 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का जन्म इसका वर्णन है, और उसके बाद 14, 15, 16, 17 में उनकी बाल लीला, पौगंड लीला, कुमार लीला या किशोर लीला, और उसके बाद यौवन लीला, और उसके बाद संन्यास तक जो है वो वर्णन आता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि गौर किशोरदास बाबा जी अपने एक भजन में कहते हैं कि गौरा रामी मुखे बोले ना ही चले, गौरार आचार गौरार विचार लोई फला फले। वो कहते हैं कि गौरा रामी मैं गौरांग महाप्रभु का हूं, मैं गौरांग महाप्रभु का हूं, मुखे बोले ना ही चले, मुख से बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। गौरार आचार गौरार विचार लोई फल फल, गौरांग महाप्रभु का आचार और गौरांग महाप्रभु के विचार हमें समझने होंगे और उसका हमारे जीवन में हमें पालन करना होगा, तब जाके हम गौरांग महाप्रभु के वास्तव में भक्त कहने योग्य है। तो आइए हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु के आचार और विचार और उसका तत्व फाउंडेशन जो है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुख से सुनते हैं। तो आदिलीला पहला ही अध्याय जिसका शीर्षक है गुरुवर्ग, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे चल के सारांश में सारे अध्यायों का वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं कि पहले अध्याय में मैं मंगलाचरण किया हूं, सारे गुरु भगवान और भगवान के भक्त इनको प्रणाम अर्पण करते हैं वो, और सर्वप्रथम श्लोक रचना करते हुए कहते हैं वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो इसमें भगवान के 6 स्वरूपों को प्रणाम कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले वंदे गुरुन, मैं आध्यात्मिक गुरुओं को वंदन करता हूं। दूसरा है ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को मैं वंदन करता हूं। तीसरा है ईशम, साक्षात भगवान ईश्वर जो है उनको मैं प्रणाम करता हूं। चौथा है ईशावतारकान, जो भगवान के अलग अलग अवतार है उनको मैं प्रणाम करता हूं। पांचवा कहते हैं तत्प्रकाशांश, जो भगवान के अंश है या जो भगवान के विस्तारित रूप है उनको मैं प्रणाम करता हूं। और छठा कहते हैं तत्शक्ति, भगवान की जो अंतरंग शक्तियां हैं उन शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से वो पहले श्लोक में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे श्लोक में वो लिखते हैं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौरोदौ पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमोनुदौ। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनको मैं प्रणाम करता हूं। कैसे है वो सह उदितौ, दोनों एक साथ उदित हुए हैं, और किस प्रकार से गौरोदय पुष्पवंतो, जिस प्रकार से चंद्र और सूर्य एक साथ प्रकट होते प्रकट होते हुए दिखाई दे, इस प्रकार से ये गौरोदय मतलब गौर देश बंगाल पश्चिम बंगाल में वो प्रकट हुए है, और चित्रो ये कितना आश्चर्यजनक बात है, और शमदो वो सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, और तमोनुदो सारा भौतिक जगत का अंधकार मिटाने के लिए ये दोनों प्रकट हुए हैं। तो ये हो गए पहले 2 श्लोक जिन्हें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये 2 श्लोक मैंने नमस्कार के रूप में अर्पण किए हैं, कि ये 2 श्लोकों में मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो पहले 2 श्लोक। तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में कविराज गोस्वामी लिखते हैं यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सोस्यांश विभवः षडैश्वर्य पूर्णो य इह भगवान स्वयं मयम् न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्वं परम इह। तो इसमें इस श्लोक का शीर्षक दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने कहा है कि वस्तु निर्देश है यह श्लोक। वस्तु निर्देश का अर्थ है कि इस संपूर्ण ग्रंथ की वस्तु क्या है, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु, और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वो बता रहे कि यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद अप्य अस्य तनुभा, कि जो ब्रह्म हम लोग चर्चा करते हैं उपनिषद, जो उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है वो तो केवल इन चैतन्य महाप्रभु की आभा है या प्रकाश है, और जिसे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाना जाता है, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं सभी के हृदयों के हृदय में रहता हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, जैसे भगवान जो परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं वो परमात्मा तो केवल ऐसे चैतन्य महाप्रभु का एक केवल अंश है। और कहते हैं कि जो षडैश्वर्य पूर्ण यह भगवान स्वयमयम, कि जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगति परतत्वम न, इनसे परतत्व इस संसार में कोई है ही नहीं, ये चैतन्य तत्व है और ये हमारे ग्रंथ की वस्तु निर्देश है। और चौथा श्लोक जिसे वो कहते हैं मैं आशीर्वाद दे रहा हूं सबको, मंगलाचरण का चौथा श्लोक, उसमें वो कहते हैं अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पूरट द्युति कदम्ब संदीपित सदार्दय कंदरे स्फुरतौ वह शचिनंदनः। वो कहते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात, लंबे समय से किसी ने जो अभी तक प्रदान नहीं किया था उसको अनर्पित, अभी तक अर्पित नहीं किया गया था उसको समर्पितुम, उसको अर्पित करने के लिए, क्या अर्पित करने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रसाम, भगवान के भक्ति का दिव्य रस इस कलयुग में अवतरित करने, कलयुग में बांटने के लिए। कलौ हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित, जो भगवान पिघले हुए सोने से भी अधिक तप्त ज्वलायमान ऐसे भगवान अवतरित होते हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह शचिनंदन, सारे श्रोताओं सारे भक्तों के सारे दुनिया के लोगों के हृदय में ऐसे भगवान शचिनंदन प्रकट हो, ऐसा आशीर्वाद वो यहां पर दे रहे हैं। और फिर पांचवा श्लोक वो रचना करते हुए कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मा वो अपि भूपुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम् चैक्यमाप्तम राधा भव ज्योति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो पांचवा श्लोक ये रचना करते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात, राधा और कृष्ण इनकी जो मधुर लीलाएं हैं वो अंतरंगा शक्ति जो भगवान की लादिनी नाम से जानी जाती है वही प्रकट कराती है, उनकी अभिव्यक्तियां हैं। एकात्माओ एकात्मो अपि, जो दोनों एक ही है, राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है, लेकिन भूवि पुरा देह भेदम गतौ तौ, लेकिन संसार पर कई युगों से वो राधा और कृष्ण हालांकि एक तत्व है लेकिन दो बनके विराजमान होके इस संसार में लीला कर रहे हैं। वही अभी चैतन्य आख्यम जो चैतन्य नाम से जाने जाते हैं प्रकटम अधुना, अभी अधुना आधुनिक आधुनिक संसार में इस कलयुग में वो प्रकट हुए हैं। तद्वयम चैक्यमाप्तम, लेकिन वो दो राधा कृष्ण अभी एक होके चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा भाव द्युति सुवलिकम, वही कृष्ण है नवमी कृष्ण स्वरूपम, भगवान श्री कृष्ण वही स्वरूप में कृष्ण है लेकिन वो राधा रानी का भाव और उनकी ड्यूटी मतलब उनकी कांति लेके प्रकट हुए हैं इस संसार में। और वो छठे श्लोक में और एक चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं श्री राधा यह प्रणह महिमा किदृशो वा नयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा किदृशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदनुभवतः किदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्य समजनी शचिगर्भ सिंधौ हरिन्दुः। तो इसमें वो वर्णन करते हैं, कहते हैं कि वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट होते हैं, इनके कुछ अंतरंग कारण हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे, उसका ये बीज श्लोक है। तीन कारणों की वजह से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, ये अंतरंग कारण है, ये इस श्लोक में वर्णन किया गया है। श्री राधा यह प्रणय महिमा, श्री राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है इसको जानने के लिए। दूसरा स्वाद्यो येना भूत मधुरिमा किदृशो वा मदीय, मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण राधा रानी मेरे ऊपर इतना प्रेम करती है, कौन से है वो गुण किदृश, उनको जानने के लिए। और तीसरा सौख्यम चास्या मदनुभवत किदृशम व्यक्ति लोभात, वो कहते हैं कि राधा रानी उनकी प्रेम की महिमा क्या है, उस प्रेम के द्वारा जो मेरे गुणों का जो आस्वादन करती है वो आस्वादन करने के पश्चात उन्हें कौन सा सुख या आनंद की प्राप्ति होती है, वो क्या चीज है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देते हैं कि जो 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 फूल होता है उस फूल को अपना स्वयं का गंध पता नहीं होता है, जो भूरा आता है, जो भूरा आता है या जो मधुमक्खी आती है, मधुमक्खी वो मधु को एकत्रित करके चली जाती है, वो मधुमक्खी को आस्वादन होता है उस मधु का, लेकिन वो फूल को नहीं होता है। तो फूल को यदि आस्वादन करना है अपनी मधु का, अपनी मधुरता का, तो उसे मधुमक्खी बन के आना होगा। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण ये सोचते हैं कि किस प्रकार से राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, एक दूसरे मेरे अंदर कौन से गुण है जिनके प्रति वो आकर्षित होती है, और तीसरा वो कहते हैं कि वो गुणों का आस्वादन जिस प्रेम से करती है उसके पश्चात जो उन्हें आनंद मिलता है वो आनंद का स्वरूप क्या है वो मैं जानना चाहता हूं। इसलिए तद भावम आढ्य, उस गुड़ भाव में चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट होते हैं। तो मैंने कहा 14 श्लोकों में वो मंगलाचरण करने वाले हैं, उसमें से पहले 6 श्लोक में उन्होंने चैतन्य तत्व का निरूपण किया, उसके पश्चात आने वाले 5 श्लोकों में वो नित्यानंद तत्व का निरूपण करेंगे, तो 6 और 5 हो जाते हैं 11। उसके बाद अगले 2 श्लोकों में वो अद्वैत तत्व का निरूपण करेंगे, 11 और 2 हो गए 13, और आखिरी श्लोक 14वां है जिसमें वो पंच तत्व का निरूपण करेंगे। तो इस प्रकार से 14 श्लोकों में चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व और पंच तत्व क्या है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये 6 श्लोक हो गए, चैतन्य तत्व का निरूपण इसमें हो जाता है। उसके बाद आता है 5 श्लोक जिसमें नित्यानंद तत्व का वो वर्णन करते हैं। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोदिशाई शेषाश्च यस्यांश कलास नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। ऐसे श्री नित्यानंद राम इनको मैं शरणं ममास्तु, मैं शरण जाता हूं, जो कि कारणोदकशाई विष्णु गर्भोदशाई पयोदिशाई शेषश्च यस्यांश कलास नित्या, जो 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 शेष अनंत शेष है, तो कारणोदकशाई विष्णु गर्भोदकशाई विष्णु शिरोदक्षा विष्णु और अनंत शेष ये सारे उनके अंश और अंशों के अंश है। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनको मैं शरण जा रहा हूं। तो नित्यानंद तत्व का निरूपण करते हुए वो आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, मायातीते व्याप्ति वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों कि मैं शरण ग्रहण करता हूं, जो चतुर्व्यूह मतलब संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धर वासुदेव, जो चतुर्व्यूह है उसमें वो संकर्षण नाम से जाने जाते हैं, और जो इस माया अतीत व्यापी वैकुंठ लोक है, जो माया के अतीत वैकुंठ है वहां पर निवास करते हैं, ऐसे श्री नित्यानंद को मैं शरण जाता हूं। और उसके पश्चात वो जो है वो किस प्रकार से 9, 10 और 11वें श्लोक में किस प्रकार से कारणोदकशाय विष्णु गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु इन तीनों विष्णुओं के स्रोत है, ऐसे श्री नित्यानंद को मैं शरण जाता हूं ऐसा वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से 5 श्लोकों में नित्यानंद तत्व इनका निरूपण होता है। उसके पश्चात 12वां श्लोक आता है, और 12वां और 13वां इन 2 श्लोकों में वो अद्वैताचार्य इस तत्व का निरूपण करेंगे। महाविष्णु जगत कर्ता मायया यह सृजत्यदः तस्यावतार एवाय अद्वैताचार्य ईश्वरः। महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु जो है वो सारी सृष्टि के जगत कर्ता है, और माया को साथ में लेके मायया यह सृजत्यदः, माया के द्वारा वो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तस्य अवतार एव, उन्हीं महाविष्णु को जो अवतार है, ऐसे श्री अद्वैताचार्य हमारे आराध्य ईश्वर है। और वो कहते हैं अद्वैतम हरिणाद्वैताद आचार्यम भक्ति शमसनाथ भक्तावतार ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रये। ऐसे श्री अद्वैताचार्य इनका मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। कैसे है ये अद्वैत हरिणाद्वैत, अभी वो अद्वैत आचार्य इनका नाम की महिमा बताते हैं, क्यों उन्हें अद्वैत आचार्य कहा गया है। अद्वैत हरिणाद्वैतात, अद्वैत इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो हरि मतलब भगवान कृष्ण इनसे अभिन्न है। अद्वैत हरिणाद्वैतात, जो हरि अद्वैत का अर्थ है अभिन्न, जो हरि से अभिन्न है इसलिए उनका नाम है अद्वैत। और आचार्यम भक्ति शमसनाथ, क्योंकि भक्ति मार्ग का वो प्रचार करते हैं इसलिए आचार्य है। आचार्य शब्द की परिभाषा हमें उपनिषदों से प्राप्त हो सकती है। आचिनोति ही शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्युत स्वयं आचरते यस्तु स आचार्य प्रचक्षते। आचार्य शब्द की परिभाषा है, आचनोति शास्त्रार्थम, सारे शास्त्रों का निचोड़ निकालते हैं। एक है पहला गुण आचार्य का, आचरणोदय शास्त्रार्थम, आचार्य स्थापयतित्व, अपने शिष्यों के आचरण में उसको स्थापित करते हैं। और ये केवल निचोड़ निकाल के दूसरों को बताते हैं, स्वयं आचरते यस्तु, जो स्वयं भी उसका पालन करते हैं उन्हें आचार्यम प्रचक्षते, उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे आचार्यम भक्ति शमशनाथ, तो ऐसे शास्त्रों का निचोड़ निकाल के दूसरों को दिया, स्वयं भी उसका पालन किया, इसलिए उनका नाम हुआ आचार्य, क्योंकि वो हरि भगवान इनसे अभिन्न है, इसलिए उनका नाम है अद्वैत, और इसलिए पूरा नाम उनका बन जाता है अद्वैत आचार्य। और ऐसे अद्वैत आचार्य इनकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। तो ऐसे दो श्लोकों में वो अद्वैत आचार्य को प्रणाम अर्पण करते हैं, और उसके पश्चात जो 14वां और आखिरी श्लोक मंगलाचरण का है उसमें वो पंच तत्व को प्रणाम अर्पण करते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तो ये तत्व है, पांच तत्व है, इन्हें पंच तत्व कहा जाता है। तो हमें पंच तत्व पता है सब कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये पांच तत्व है। मायापुर में यदि कोई भक्त गए होंगे तो इस प्रकार से पंच तत्व का उन लोग ध्यान कर सकते हैं। तो बीच में रहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके दाएं ओर रहते हैं नित्यानंद प्रभु, उनकी बाई ओर रहते हैं अद्वैत आचार्य, महाप्रभु के बाई ओर है गदाधर पंडित, और उनकी बाई ओर है श्रीवास ठाकुर। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो उनका इस प्रकार से स्थिति जब समझ में आ जाता है तब ये जो पंचतत्व मंत्र प्रणाम मंत्र जो उन्होंने बोला है इस 14वें श्लोक में वो समझ में आ सकता है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त भक्त रूप स्वरूपकम भक्त रूप। तो चैतन्य महाप्रभु जो भक्त रूप है, भक्त रूप स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु जो है वो स्वरूप है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, अद्वैताचार्य जो वो भक्तावतार है, भक्तावतारम भक्ताख्यम श्रीवास ठाकुर जो है वो भक्त है, और नमामि भक्त शक्तिकम, और गदाधर पंडित जो है वो भक्त शक्ति है। तो इस प्रकार से ये पंचतत्व इनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम अर्पण करते हैं। और इस प्रकार से वो प्रणाम अर्पण करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 14 श्लोक थे उनका जो विभाजन है उनका वो नाम भी देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना सुंदर तरीके से लिखते हैं कि जो मंगलाचरण मैंने किया है वो कहते हैं, से मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। जो मंगलाचरण किया जाता है उसमें तीन चीजें होनी चाहिए, तीन प्रकार होते हैं। एक तो है वस्तु निर्देश होना चाहिए, दूसरा आशीर्वाद होना चाहिए, और नमस्कार होना चाहिए। तो वो कहते कि प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। पहले दो श्लोकों में मैंने नमस्कार अर्पण किया है, तो पहले श्लोक में सामान्य नमस्कार था, दूसरे श्लोक में विशेष नमस्कार था। आप लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन सा विशेष नमस्कार है और कैसे, तो वो आगे विस्तार से बताएंगे। तो पहले श्लोक में मैंने सामान्य नमस्कार किया, दूसरे श्लोक में मैंने विशेष नमस्कार किया, तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश यहां है ते जानी पर तत्वरे उद्देश्य, पर तत्व का उद्देश्य क्या है ये वस्तु निर्देश मैंने तीसरे श्लोक में गणना की, चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मागिय कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु की कृपा सारे जगत को मिले ऐसा आशीर्वाद मैंने चैतन्य महाप्रभु से मांगा वो चौथे श्लोक में। और उसी श्लोक में चौथे और पांचवें श्लोक में वो कहते हैं कि मैंने चौथे और पांचवें श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार का बाह्य कारण बताया है, पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन, और पांचवें और छठे श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के जो मूल तत्व है उसका निरूपण किया है। यही छह श्लोके कही चैतन्य रतत्व आर पंच श्लोके नित्यानंद महत्व। तो पहले छह श्लोकों में मैंने चैतन्य तत्व बताया है, अगले पांच श्लोकों में मैंने नित्यानंद महत्व बताया है, आर दुई श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, आर एक श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान, दो श्लोकों में मैंने अद्वैताचार्य इनका तत्व प्रस्तुत किया है, और आखिरी 14वें एक श्लोक में मैंने पंच तत्व का निरूपण किया है। और वो कहते हैं कि यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण ताही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। इन 14 श्लोकों में मैंने अभी तक तत्व निरूपण या मंगलाचरण किया हुआ है। तो ऐसा मंगलाचरण करने के पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आराध्य देव इनको भी प्रणाम करते हैं। सारे वेदों का ज्ञान तीन विभागों में विभाजित किया जा सकता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान के क्या साथ क्या संबंध है उसे कहते हैं संबंध ज्ञान। उस संबंध को स्थापित कैसे किया जाए, प्राप्त कैसे किया जाए पुनः, उसे कहते हैं अभिधेय, प्राप्त करने की विधि। और प्राप्त करने के पश्चात जो पुनरुत्पत्ति होते हैं उसे कहते हैं प्रयोजन। और इन तीनों संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के हमारे एक अधिष्ठाता देव होते हैं। तो उन अधिष्ठात्रा देव
जो हमारे संबंध देव है, उन संबंध मूर्ति को कहते हैं मदन मोहन। तो वो सबसे पहले मदन मोहन जी को प्रणाम करते हैं। जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। संबंध मूर्ति को प्रणाम करने के पश्चात वो हमारी अभिधेय मूर्ति जो है श्री राधा गोविंद उनको प्रणाम करते हैं।
दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानः स्मरामि।
राधा गोविंद को प्रणाम करने के पश्चात हमारे जो प्रयोजन के विग्रह है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी उनको वो प्रणाम करते हैं। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुनः।
तो इस प्रकार से राधा मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ इनको प्रणाम करते हुए अभी वो शुरू करते हैं अपना अध्याय का कथन। और सबसे पहले इन सबको प्रणाम करने के पश्चात वो आप सभी को भी प्रणाम करते हैं। यह है इनकी इनकी कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनकी महानता।
वो कहते हैं सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार ए सब श्लोके रकरी अर्थ विचार। ये जो सारे श्लोक मैंने दिए हैं इनका आप विचार कीजिए। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, मैं सारे वैष्णव जो श्रोता जो सुनेंगे अभी 21वीं सदी में जो सुनेंगे उनको भी मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी इन सबको प्रणाम करते हैं और वो सुनने के लिए अभी कहेंगे। तो इसके पहले ये जो आदि लीला है, मैंने पहले भी कहा था आपको जो सात अध्याय है वो तत्व निरूपण है, पहले सात अध्याय। तो जो पहले दो श्लोकों की रचना उन्होंने की कविराज गोस्वामी ने, जिसे हमने नमस्कार कहा, उसका वर्णन आदि लीला के पहले अध्याय में आएगा। उसके पश्चात जो तीसरा श्लोक किया वो आएगा आदि लीला के दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय का शीर्षक होगा चैतन्य तत्व निरूपण। तीसरे अध्याय में चौथे श्लोक का वर्णन होगा जिसका शीर्षक रहेगा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण। पांचवा और छठा श्लोक का वर्णन विस्तार से आएगा चौथे अध्याय में जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के गुह्य कारण, अंतरंग कारण। जो सात से ग्यारह हमने जो पांच श्लोक देखे नित्यानंद के वो पांचवे अध्याय में आएंगे जिसका शीर्षक है नित्यानंद तत्व निरूपण। छठा अध्याय जो दो श्लोक बारहवें और तेरहवा रचना किया गया वो आएंगे अद्वैत तत्व निरूपण छठा अध्याय। और सातवें अध्याय में पंचतत्व आख्यान जो चौदहवा श्लोक रचना किया था पंचतत्वात्मकम कृष्णम इससे शुरू होकर उसका वर्णन आएगा सातवें अध्याय में। तो इस प्रकार से जो तत्व निरूपण है वो पहले सात अध्याय में होने वाला है। पहले अध्याय का शीर्षक हमने जैसे ही पहले ही कहा मंगलाचरण। दूसरे अध्याय का शीर्षक आप इसे याद रखने का प्रयास कीजिए ताकि इससे हमें समझ में आ सकता है कि कहां पे क्या है। तो पहले अध्याय में मंगलाचरण होगा, दूसरा अध्याय में चैतन्य तत्व निरूपण होगा, तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण, तीन बाह्य कारण है, चौथे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के गुह्य अंतरंग कारण ये रहेगा चौथा अध्याय, पांचवे अध्याय में नित्यानंद तत्व निरूपण होगा, छठे अध्याय में अद्वैत तत्व निरूपण होगा और सातवें अध्याय में पंच तत्व का निरूपण होगा, पांचों तत्व। तो इन तत्वों का निरूपण होगा इन सात अध्याय में। तो ये सात अध्याय इस प्रकार से हमारे आगे आएंगे। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे वैष्णवों को भी प्रणाम करने के पास कहते हैं कि सकल वैष्णव शुनि करी एक मन चैतन्य कृष्ण र शास्त्र मत निरूपण। सारे वैष्णव सुनिए, आप कैसे सुना करी एक मन, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये चैतन्य तत्व का जो निरूपण मैं यहाँ पे जो करने वाला हूं इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए, सो मत जाइए।
तो क्योंकि तत्व चल रहा है तो इसमें खास करके हो सकता है कि हमारा 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 बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाता, तो इसलिए कहते हैं कि वो ध्यान देके सुनिए सारे श्रोतागण।
और अभी वो सबसे पहला श्लोक का निरूपण करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जो पहले दो श्लोक नमस्कार के रूप में उन्होंने अर्पण किए थे उसका वर्णन इस पहले अध्याय में आता है। तो सबसे पहला जो श्लोक था आपको याद होगा कैसे हमने लिया था, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम्। तो छह तत्वों को उन्होंने प्रणाम किया है। तो सबसे पहले आते हैं वंदे गुरुन, तो गुरुओं को मैं वंदना करता हूं। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की विशेषता ऐसी है कि वो पहले समरी सारांश रूप में कुछ प्रस्तुत करते हैं बाद में उसका विस्तार करते हैं। तो ये छह किस किस को मैं प्रणाम किया है वो छह को वो बताते हैं सारांश रूप में। तो सबसे पहले बताते हैं गुरु, वंदे गुरु, तो मैं कौन कौन से गुरुओं को प्रणाम करता हूं, मंत्र गुरु आरयत शिक्षा गुरुगण तहार चरण आगे करिए वंदन। मंत्र गुरु मतलब जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है, और यत शिक्षा गुरु जो शिक्षा गुरु है उन सबको मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। तो एक है दीक्षा गुरु और दूसरे है शिक्षा गुरु, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये जो छह गोस्वामी है ए छय गुरु शिक्षा गुरु ये आमार तांस बार पाद पद में कोटि नमस्कार। मैं कोटि कोटि नमस्कार इन छह गोस्वामियों के चरणों में करता हूं क्योंकि ये मेरे शिक्षा गुरु है। तो ये शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु ये हो गए गुरु के दो भेद, उनको वो प्रणाम करते हैं। उसके बाद आते हैं ईश भक्त, ईश वंदे गुरु ईश भक्तान, तो दूसरा है ईश भक्त भगवान के भक्त, भगवान एर भक्त यत श्रीवास प्रधान तांसवार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। मैं सहस्त्र प्रणाम अर्पण करता हूं भक्तों को और उनमें सब में प्रधान है श्रीवास, तो जो श्रीवास ठाकुर है उनको मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद आते हैं भक्त अवतार, तो कौन है भक्त अवतार, अद्वैताचार्य प्रभुर अंश अवतार तार पाद पद में कोटि प्रणति आमार, कोटि कोटि प्रणाम मैं अर्पण करता हूं श्री अद्वैताचार्य जो भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। और उसके बाद आता है प्रकाश, तो भगवत प्रकाश तत्प्रकाशंश्च नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश तार पाद पद में वंदो यार मुई दास। तो मैं नित्यानंद राय जो कि भगवान के प्रकाश के रूप में अवतरित हुए उनको भी मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। और आखिरी में आता है तत्शक्ति पांचवा तत्व, गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति तांस बार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति, सहस्त्र प्रणाम मैं अर्पण करता हूं उनको, किनको, गदाधर पंडित जो कि महाप्रभु की शक्ति के रूप में अवतरित हुए। और ईश भगवान स्वयं वो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान तहर पदार विंदे अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम मैं अर्पण करता हूं ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को जो स्वयं ईश्वर है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैसे जो छह घटकों को छह तत्वों को छह स्वरूपों को उन्होंने प्रणाम किया, वो छह कौन कौन है इसका वो निरूपण करते हैं। और इनको प्रणाम करने के पश्चात वो आगे जाके अभी विस्तार से जो छह जिन जिन को उन्होंने प्रणाम किया है वो छह इनका और वो आगे विस्तार करते हैं, क्योंकि तत्व है, तत्व जब तक हमें ठीक से समझ में नहीं आता, चैतन्य महाप्रभु का तत्व जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि श्रीमद भागवत के दशम स्कंद में हम लोग तुरंत छलांग नहीं लगा सकते जब तक हम लोग पहले नौ स्कंद नहीं पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से जब तक तत्व हम लोग ठीक से समझ नहीं लेंगे तब तक हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो इसलिए अभी तत्व को विस्तार से कहते हुए सबसे पहले वंदे गुरु, जो गुरु है वो गुरु तत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगणे। कृष्ण गुरु के रूप में प्रकट होते हैं इसलिए गुरु कृष्ण के समान पूजने चाहिए। इसलिए जो गुरुवाष्टक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्होंने लिखा हुआ है उसकी सातवीं पंक्ति में हम लोग कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि,
किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम, जो साक्षात हरि जो गुरु है वो कृष्ण से अभिन्न है ऐसा शिष्य मानता है। और गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें न भक्त गणे, गुरु के रूप में कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं ऐसे ये गुरु होते हैं। और गुरु कृष्ण से अभिन्न है इसके लिए शास्त्रों से कई सारे प्रमाण कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैंने कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनकी विशेषता है कि अलग अलग शास्त्रों से आपको प्रमाण लाके स्थापित कर देंगे गुरु कृष्ण के रूप में है। तो इसलिए श्रीमद भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक वो प्रमाण के रूप में देते हैं जिसमें कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं आचार्य माम विजानीयान न अवमन्येत कर्हिचित नमर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्व देवमयो गुरु हो। वो कहते हैं कि आचार्य कृष्ण कहते हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और उनका अवमान न अवमन्येत, उनका अवमान कभी नहीं करना चाहिए। उसे यदि सामान्य व्यक्ति मानेंगे और उनकी ईर्ष्या करेंगे तो वह अपराध है, क्योंकि सर्व देवमयो गुरु हो, सारे देवों के प्रतिनिधि गुरु होते हैं। तो ये है गुरु। और इसलिए वो कहते हैं कि जो गुरु है वो केवल एक गुरु नहीं होते हैं, हमारे एक होते हैं मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु। जो 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 दीक्षा देते हैं वो एक गुरु है और जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं वो एक गुरु हमारे होते हैं। और कई बार भक्तों को लगता है कि हमारे दीक्षा गुरु जो है वो महान है बड़े है, लेकिन कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जिनसे हम लोग वास्तव में शिक्षा लेते हैं वो गुरु सबसे महान बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हम लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे। कृष्ण सारे जीवात्माओं के हृदय में चैत्य गुरु के रूप में स्थित है, लेकिन जीव साक्षात उनको कभी पहचान नहीं पाता चैत्य गुरु के रूप में। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण को जीव पहचान नहीं पाता, इसलिए शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे। इसलिए शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। तो जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं वो गुरु सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। इसलिए ऐसे शिक्षा गुरुओं की भी कभी अवमानना हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पहले गुरु तत्व स्थापित करने के पश्चात वो अभी कहते हैं ईश भक्त, जो भगवान के भक्त है। तो गुरु दो प्रकार के, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। उसके पश्चात भगवान के भक्त, अभी वे भगवान के भक्तों को भी दो प्रकार होते हैं। सही भक्त गण है दिव्य विविध प्रकार परिषद गण एक साधक गण आर। ऐसे भक्तों के भी जो भगवान के भक्त है उनके दो प्रकार है। तो द्विविध प्रकार, एक प्रकार है जिन्हें कहते हैं परिषद गण, जो भगवान के नित्य पार्षद शुद्ध भक्त, और दूसरे साधक गण आर, जो साधक भक्त है। इसलिए कहते हैं कि साधक भक्त जो हम जिनके साथ में रहते हैं उनकी भी कभी अवमानना नहीं करनी चाहिए। कई बार हम लोग मानते हैं शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन साधक भक्त भी कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी उतने ही महान होते हैं। तो साधक भक्त और दूसरे है परिषद भक्त। तो भक्तों के भी दो श्रेणियां उन्होंने हमें बताई है। अभी तीसरा है भक्त अवतार, उसको भी वो कहते हैं। अभी जो अवतार होते हैं उनके भी तीन प्रकार होते हैं। ईश्वर अवतार ए तीन प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार तृतीय ए मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिका यत। तो ये तीन प्रकार के अवतार भगवान के बताते हैं, अंश अवतार गुण अवतार और शक्त्यावेश अवतार। वास्तव में भगवान के छह अवतार, छह प्रकार के अवतार होते हैं। कविराज गोस्वामी आगे उसका अलग से निरूपण करेंगे, लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि तीन प्रमुख अवतार होते हैं, अंश अवतार गुण अवतार और शक्त्यावेश अवतार। तो जो अभी वो उदाहरण के साथ भी स्थापित करेंगे, जो मत्स्य कूर्म वराह है ये जो है वो भगवान के अंश अवतार है। अंश अवतार पुरुष मत्स्यादि कयत, मत्स्य आदि आदि मतलब मत्स्य कूर्म वराह ये जो है वो भगवान के अंश अवतार है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतारे गणी, गुण अवतार कौन है भगवान के? ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी, ये भगवान के गुण अवतार है। और शक्त्यावेश अवतार कौन है फिर? शक्त्यावेश सनकादि पृथ्वी व्यास मुनि, तो व्यास देव पृथ्वी महाराज।
सनकादिक, चतुष कुमार, ये सब भगवान के जो है वो शक्त्यावेश अवतार है। उसके बाद आता है प्रकाश, तत्प्रकाशांश तत्शक्ति ही। तो अगला तत्व है प्रकाश, मतलब भगवान का विस्तारित रूप। तो भी जो विस्तारित रूप है उसके भी दो प्रकार होते हैं, क्या है, द्वि रूपे हो या भगवानेर प्रकाश, एकते प्रकाश हो आरते विलास। एक होता है प्रकाश विग्रह और दूसरा होता है विलास विग्रह। तो आप कहेंगे कि ये दो प्रकाश दो, दो दोनों में अंतर क्या है, तो ये भी बताते हैं। एक ही विग्रह यदि होय बह रूप, आकारे तो भेद ना ही, एक ही स्वरूप। तो एक ही विग्रह है भगवान के, एक ही विग्रह है, लेकिन उसके यदि बहु रूप, अलग अलग रूप होते हैं, भगवान का विग्रह एक ही है लेकिन उसके अलग अलग रूप है, उनके आकार में कुछ भी भेद नहीं है, तो उसे प्रकाश कहना चाहिए। और उसका उदाहरण के रूप में वो कहते हैं कि महिषी विवाहे यैचे यैचे कैलरास। तो प्रकाश रूप मतलब भगवान का विग्रह एक ही है और उन आकारों में कुछ भेद नहीं होता है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में हम लोग सुनते हैं महिषीगण मतलब द्वारकाओं की रानियां, तो द्वारका में जो 16108 रानियां थी, नारद मुनि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है, जब नारद मुनि दर्शन करने के लिए भगवान का गए तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि 16108 रानियों के साथ में 16108 कृष्ण के स्वरूप वो देखते हैं। तो भगवान एक ही थे, उनके आकार में भी कुछ भेद नहीं, इसलिए वो जो रूप है। और हम लोग देखते हैं, एक फेमस चित्र है हमारे बीबीटी का, रासलीला में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग गोपी के साथ अलग अलग कृष्ण बने हुए नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का रूप है वो प्रकाश रूप है, कृष्ण एक जैसे दिखाई देते हैं हर एक गोपी को, तो वो है प्रकाश रूप। और उसके पश्चात आता है जो है भगवान का विलास रूप। उसमें क्या होता है, भगवान का विग्रह तो एक ही होता है लेकिन उनके आकार में भेद होता है। एक ही विग्रह किंतु आकारे हो यो आन, अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। उसको विलास कहते हैं, विग्रह एक ही है लेकिन उसका आकार अलग है, तो उसे कहते हैं विलास। उदाहरण क्या है इसके, यैचे बलदेव पर व्योमे नारायण, यैचे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण। तो जैसे प्रद्युम्न संकर्षण, वासुदेव, अनुरुद्ध और बलराम, नारायण पर व्योमे, ये सब भगवान के ही स्वरूप है लेकिन उनका आकार अलग अलग है, इसलिए उन्हें विलास कहा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश भी जो है वो दो प्रकार के हुए, प्रकाश प्रकाश और विलास। आगे आती है भगवत शक्ति, तो शक्ति भी तीन प्रकार की होती है, कैसे है, ईश्वरेर शक्ति हय ए तीन प्रकार। ईश्वर की शक्ति, भगवान की शक्ति, जैसे शक्ति और शक्तिमान, तो शक्तिमान है भगवान, तो उनकी शक्तियां तीन प्रकार की होती है, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रजे गोपी गण आर, सभाते प्रधान व्रजेंद्र नंदन या ते स्वयं भगवान। स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन, उनके जो ये तीन शक्तियां हैं, एक लक्ष्मी गण, वैकुंठ में लक्ष्मी गण ये सबसे निचला स्तर है, सब लोग लक्ष्मियों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन, लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की तीन शक्तियों में सर्व सबसे कनिष्ठ शक्ति है वो है वैकुंठ की लक्ष्मियां। दूसरा स्तर है वो है महिषी गण यार, जो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की रानियां थी वो है, और सबसे उच्च सर्वोच्च स्तर है वृंदावन की गोपियां। तो ये तीन अंतरंग शक्ति के अलग अलग प्रकार है, वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। तो ये तीन भगवत शक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं वो प्रकट होते हैं। और ईश तत्व हमने तो पहले ही कहा कि किस प्रकार से भगवान स्वयं वो है ईश तत्व। तो इस प्रकार से छह तत्वों को उन्होंने अभी तक प्रणाम किया है। अभी इन छह तत्वों को पहले श्लोक में, अभी कल्पना कीजिए एक श्लोक को इतना विस्तार से कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, क्या ये माइंड बॉगलिंग नहीं है? इसलिए उनको कविराज पदवी बहाल की थी उस समय के लोगों ने। अभी वो कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पहले दो श्लोकों में नमस्कार अर्पण किया है, प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। पहले श्लोक में ये जो पहला श्लोक आपने सुना ये तो सामान्य वंदन हो गया, अभी मैं विशेष वंदन या नमस्कार अर्पण करता हूं। और जो दूसरा श्लोक हमने देखा था,
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदौ।
ये दूसरा श्लोक है, अभी वो इसको विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों का वो विच्छेद करते हैं, और शब्द विच्छेद में पहले गौड़ोदये पुष्पवंतो शब्द की परिभाषा लिखते हैं। व्रजे ये विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जी नि दोहार निज धाम से दुई जगतेरे होइया सदय गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदय। वो कहते हैं कि व्रजे ये विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, वृंदावन में जो पहले कृष्ण और बलराम विहार करते थे, अभी सही दुई जगत तेरे होइया सदय, जगत के ऊपर कृपा करने के लिए दया उनके मन में उत्पन्न हुई, और गौड़ देशे पश्चिम बंगाल में वह अनुकंपा के कारण करिला उदय दोनों अवतरित हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो और गौड़ोदय पुष्पवंतो। तो ये गौड़ोदय पुष्पवंतो की परिभाषा, मोनाश करी कैला तत्व वस्तुदान। वो कहते कि हमारा अज्ञान के कारण हम लोग भ्रमित रहते हैं, और इस अज्ञान रूपी अंधकार को ये दो भाई जो अभी इसको निकालने वाले है, ये है तमो मुदो। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो हमारा अज्ञान प्रमुख क्या है कि हम लोग बाकी चीजों को प्राधान्यता प्रदान करते हैं, वो हमारा अज्ञान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको कहा गया है कैतव धर्म, और इसलिए श्रीमद भागवत में दूसरे श्लोक में इन सब वांछाओं को दूर रखा गया है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तो ये श्रीमद भागवत है जो कैतव धर्म का, जो अलग अलग सारे कैतव धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि, इनको वह त्याग कर देता है, प्रोज्जित उखाड़ के फेंकता है। ऐसे ये जो दो भाई अभी अवतरित हुए हैं, वो सारा अंधकार यहां से दूर करते हैं। और अभी वो कहेंगे शब्द उपशब्द की परिभाषा, मतलब जो आशीर्वाद दे रहे हैं। तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। जो परम सत्य कृष्ण है, जो शुद्ध प्रेम प्रकट होने वाली कृष्ण प्रति जो प्रेममय भक्ति है, वो पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और जो सारे आनंद का सार है, ऐसी भक्ति का उद्घाटन करने के लिए ये दो प्रकट हो रहे हैं, और ये आशीर्वाद सारे जग को दे रहे हैं। इसलिए शमदौ। तो कविराज गोस्वामी के मन में आता है कि मैंने खाली में इनकी तुलना सूर्य और चंद्र से की, क्योंकि सूर्य और चंद्र क्या करते हैं? सूर्य चंद्र बहिरेर तमसे विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। ये सूर्य और चंद्र करते क्या है कि प्रकाश करते हैं, और केवल बाह्य वस्तु जो दिखने वाली वस्तु है, बहिर्वस्तु घटपट जो बर्तन है आदि, कहा जाए भौतिक वस्तुओं को घट मतलब बर्तन आदि को वो प्रकाशित करते हैं। ये दुई भाई, ये जो दो भाई है, ये तो और गहरा अंधकार दूर कर सकते हैं। दुई भाई हृदय रक्षाली अंधकार दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। ये दुई भाई हमारे हृदय का अंधकार को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार, दो भागवतों के संपर्क में लाके हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं। कौन है ये दो भागवत? एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आरो भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है भागवत शास्त्र, भागवत ग्रंथ भागवत, और दूसरा है भक्ति रस पात्र भागवत, दूसरा है भक्त भागवत, जो भक्ति रस का पात्र बना हुआ है, आस्वादन कर रहा है, ऐसा है भक्त। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत, इन दो भागवतों के संपर्क में हमें चैतन्य महाप्रभु लाके हमारे हृदय का अंधकार दूर करते हैं। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस ताहर हृदय तार प्रेमे हय वश। इन दो भागवतों के द्वारा भक्ति रस उनके हृदय में संचरित करते हैं, और उनके भक्ति के द्वारा ऐसे भगवान वश हो जाते हैं। और गौड़ देश में उन्होंने अवतरण लिया हुआ है। अभी चित्रव का अर्थ है आश्चर्यजनक। अभी आश्चर्यजनक घटना क्या है? दो आश्चर्य है, एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, दोनों एक साथ अवतरण हुए, सूर्य और चंद्र दोनों हम एक समय देख सकते हैं आकाश में, लेकिन दोनों का उदय एक साथ नहीं होता है। तो ये दोनों ऐसे हैं, इसमें आश्चर्यकारक बात यह है कि एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश अर अद्भुत चित्त गुहार तमह करे नाश। तो अद्भुत बात यह है, बाहर के सूर्य चंद्र जो हम लोग देखते हैं उससे उसकी तुलना में दो अद्भुत बातें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में है। पहली अद्भुत बात है दोनों समकाले दोहार प्रकाश एक साथ उदय हुआ है दोनों का, और दूसरी विशेष बात है कि जो दूसरे सूर्य चंद्र है वो केवल बाहर का अंधकार दूर करते हैं, ये दो भाई जो है वो हमारे हृदय का अंधकार दूर करते हैं, ये उनकी विशेषता है। और इसलिए चित्रऊ, तो इसलिए यही चंद्र सूर्य दुई परम सदय जगत तेरे भाग्य गौड़े कलिए कैला उदय। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा ये संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु है, और इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य के लिए उदित करने के लिए वो बंगाल पश्चिम बंगाल में उनका उदय हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कितना ये आश्चर्यजनक श्लोक, इसकी रचना कविराज गोस्वामी करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमोनदौ। और उनको प्रणाम करने के पश्चात अभी कविराज गोस्वामी कहते हैं, वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे रडरे विस्तारे न वर्णी सारार्थ कही अल्पाक्षरे। आपको लग रहा होगा कि इतना विस्तार से क्यों दिया है इन्होंने, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे रडरे। वक्तव्य बाहुल्य मतलब बोले जाने वाले शब्द बहुत हो जाएंगे, इसलिए ग्रंथ का विस्तारे रडरे, ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा इसलिए मैं डर रहा हूं, ग्रंथ ज्यादा बड़ा नहीं हो, कलियुग के जीव सुनते सुनते सो नहीं जाए। इसलिए वो कहते हैं विस्तारे न वर्णी सारार्थ कही अल्पाक्षरे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं केवल अल्पाक्षर सार के रूप में मैं आपको केवल सारांश के रूप में थोड़े शब्दों में मैं बता रहा हूं। तो ऐसे कविराज गोस्वामी जिन्होंने सार रूप में हमें सब कुछ प्रदान किया है, अभी आप इतने समय से सुन रहे हैं ये तत्व का निरूपण, कविराज गोस्वामी आप सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो कहते हैं तीन चीजें प्राप्त होगी जो ध्यान पूर्वक सुनेगा। सुनीले खंडी बेचित्तेर अज्ञानादि दोष कृष्णे गाढ़ प्रेम हबे पाइबे संतोष। वो देखिए ये तीन चीजें क्या होगी यदि आप दृढ़ता पूर्वक सुनेंगे तो, सुनीले सुनने से क्या होगा, खंडी बेचित्तेर अज्ञानादि दोष, सबसे पहला बात होगा हमारे हृदय का अज्ञान का दोष चला जाएगा। दूसरा कृष्णे गाढ़ प्रेम हबे, भगवान कृष्ण के प्रति गाढ़ भक्ति हमारी बन जाएगी। और तीसरा है पाइबे संतोष, हमें संतोष संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से आखिरी श्लोक पहले अध्याय में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, और सारे जितने सारे अध्याय 60 अध्याय हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन अध्यायों का आखिरी श्लोक यही होता है। श्री रूप रघुनाथ पदयार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ पदयार आश, श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनके चरण कमलों की धूली की मैं अभिलाषा करता हूं, और अभिलाषा करते हुए मैं कविराज कृष्णदास कविराज मैं ये चैतन्य चरितामृत लिख पा रहा हूं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 14 श्लोकों का मंगलाचरण उन्होंने लिखा हुआ है उसके पहले 2 श्लोकों का विस्तार से वर्णन ये पहले अध्याय में आता है, जिसका शीर्षक प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरुवर्ग। कविराज गोस्वामी के अनुसार इसका शीर्षक है मंगलाचरण। तो जो दो श्लोक हमने लिए उसमें से मैं आपको केवल एक सारांश के रूप में, जो पहला श्लोक था उसमें 6 चीजों को हमने प्रणाम किया। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारम प्रकाशांश तत् प्रकाशांश तत् शक्ति ही। तो ये 6 चीजों को जब हमने प्रणाम किया, तो सबसे पहले गुरु, तो गुरु जो है वो 2 प्रकार के हमने देखे, कौन कौन से देखे आपको याद होगा, 2 गुरु है, एक है दीक्षा गुरु दूसरे है शिक्षा गुरु। उसके बाद है ईश भक्त, भगवान के भक्त 2 प्रकार के, एक है साधक भक्त और दूसरा होता है पारिषदगण यानी शुद्ध भक्त। हमने देखा ईश तत्व का अर्थ है भगवान स्वयं, उसकी आगे चर्चा की जाएगी। अगला 4th हमने देखा अवतार, भगवान के अवतार भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अंश अवतार, गुण अवतार और शक्त्यावेश अवतार उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। अंश अवतार के रूप में मत्स्य, कूर्म, वराह आदि, गुण अवतार के रूप है ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु, शक्त्यावेश अवतार है सनत कुमार, सनकादि, चतुष्कुमार, पृथु महाराज, व्यासदेव आदि। पांचवा हमने देखा प्रकाश। प्रकाश भी दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रकाश विग्रह, दूसरा है विलास विग्रह। प्रकाश मतलब आकार, विग्रह तो वही है और आकार में भेद नहीं है। जैसे द्वारका की रानियों के साथ कृष्ण और अगला है रासलीला में नृत्य करने वाले गोपियों के साथ कृष्ण, यह है प्रकाश रूप। और दूसरा भेद है उसका, वो है विलास रूप। विलास मतलब विग्रह वही है लेकिन आकार में थोड़ा भेद होता है, जैसे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये है। और उसके पश्चात हमने देखा तत्शक्ति, छठा 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 तत्व। शक्ति मतलब भगवान की शक्ति, उसमें भी हमने देखा उसके तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार की शक्तियां। सबसे पहला देखा हमने वैकुंठ की लक्ष्मियां, दूसरा है द्वारका की रानियां और तीसरा है व्रज की गोपियां। तो इस प्रकार से पहले श्लोक में उन्होंने छह वस्तुओं को, छह तत्वों को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में ये सामान्य प्रणाम हुआ और दूसरे श्लोक में उन्होंने विशेष प्रणाम किया उनके आराध्य देव चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनको। किस प्रकार से बाहर के सूर्यचंद्र केवल जो है वो बाहर का अंधकार दूर करते हैं लेकिन ये दो भाई हमारे अंतरंग हृदय का अंधकार दूर करते हैं। बाहर के सूर्य और चंद्र एक साथ कभी उनका उदय नहीं होता लेकिन ये दो भाई इनका एक साथ उदय हुआ है, ये उनकी विशेषता है। इसलिए चित्रऊ ये कितनी आकर्षक बात है और वो सारे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, इसलिए चित्र शमद तमोनुदो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनको मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। तो इस प्रकार से हमने देखा पहले दो श्लोकों का विस्तार से वर्णन हुआ, अभी कविराज गोस्वामी तीसरे श्लोक का विस्तार से वर्णन करेंगे, वो दूसरे अध्याय में आएगा। और दूसरे अध्याय का शीर्षक चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमने कहा दूसरे अध्याय का शीर्षक है चैतन्य तत्व निरूपण। ये चैतन्य तत्व क्या है और क्यों महाप्रभु प्रकट होते हैं इसकी चर्चा हम हमारे कल के सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।